जयधवला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर 10।
ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वच्चायानं नमो लोए सौवसाहूनं कविय घनघायिकं मम भविय जनानन्दकारिणं वीरं नमियूनभणिसामो
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतिशुव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तेरहवीं पुस्तक में दर्शन मौखिक सपना का अर्थाधिकार देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 76 पर आ गए। 76 यहाँ तो दर्शन मौखिक सपना में हम ये बात कल से देख रहे थे कि जब मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाता है संक्रमण, और उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व भी सम्यक प्रकृति रूप पूरी रूप से संक्रमित होती है, सर्व संक्रमण होता है, तब 8 वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रहती है। तो ये 8 वर्ष प्रमाण जब स्थिति शेष रहती है तब क्या क्या विशेष बातें होती है उसकी बात हमने की। इसके पहले अनुभव का घात कांडक द्वारा होता था, अब अनुसमय अपवर्तन होने लगता है। इसके पहले कांडक अनुभव स्थिति कांडक का प्रमाण पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण होता था, अब अंतर्मूल प्रमाण होने लगता है। और तीसरी बात, गुणश्रेणी अब तक गलितावशेष और उदयावली के ऊपर होती थी, अब यहाँ से उदय के समय से लेकर होती है और अवस्थित होती है। ये तो विशेषताएं यहाँ हो जाती है। अब ये जो अंतिम स्थिति कांडक है उसकी लिपि कुछ विशेषताएं बताएंगे, यानी द्विचरण स्थिति कांडक तक तो ये बातें होगी उसकी, अब अंतिम स्थिति कांडक में क्या है। तो द्विचरण कांडक से अंतिम स्थिति कांडक संख्यात गुना बड़ा है, आयाम स्थिति कांडक का बस उसकी बात चल रही है, क्योंकि अभी कितना कृतकृत्य वेदक इतना ही काल शेष रहेगा जब अंतिम थाली गिरेगी। जब कांडक का ग्रहण किया तब कितना दिया उसने, कृतकृत्य को छोड़ा और ऊपर
उत्कीर्ण काल,
उत्कीर्ण काल के लिए जितने समय लगेगी उतना छोड़कर उसने कांडक को ग्रहण किया, क्योंकि वो नीचे गलते 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 कांडक प्रमाण अंतिम शेष अंतिम फाली के लिए कृतकृत्य वेदक के ऊपर कांडक प्रमाण निषेक शेष रहेंगे और उस पूरे का पूरा घात हो जाएगा। तो ये कृतकृत्य वेदक का काल प्लस कुछ ये जो बात हमने देखी थी उसको छोड़कर ऊपर का सभी कांडक प्रमाण में आता है। तो वो कांडक प्रमाण में क्या क्या आता है, तो उन्होंने बताया था पूर्व जो पहले में पहली जो गुण श्रेणी थी उसका शीर्ष, उसके नीचे के कुछ निषेक और बाकी ऊपर का सभी कुछ। तो भी ऊपर के सभी कुछ में जो नई नई गुण श्रेणी शीर्ष बनते गए उन सबको उसमें ले लेना, ये बात उन्होंने विस्तार से बताई। तो यहाँ जो दिया जाने वाला प्रदेश कुंज किस पद्धति से दिया जाता है, अंतिम स्थिति कांडक का घात करके पहली फाली दूसरी फाली किस रूप से दी जाती है, तो नीचे तो गुणश्रेणी रूप और कांडक में, यानी पहली दूसरी तीसरी फाली का कांडक में भी कुछ द्रव्य जाएगा, तो गुणश्रेणी में नीचे कांडक के नीचे कितना होता है, तो असंख्यात बहुवा कांडक के नीचे, और कांडक के अंदर अंदर ही ऊपर ऊपर का निषेक का नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा तो आएगा, तो वो तो असंख्यातवे भाग प्रमाण जाएगा और बहुभाग नीचे गुणश्रेणी में दिया जाएगा। तो वर्तमान समय से उदय समय से लेकर कांडक के नीचे के निषेक तक सर्वत्र असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाएगा, ये बात हमने कल देखी थी। उसके बाद ये जो कांडक के नीचे की जो स्थिति है निषेक, वही गुण श्रेणी का शीर्ष हो गया अभी वर्तमान में। कांडक के नीचे की जो स्थिति है, जो निषेक है, उसको अभी गुण श्रेणी शीर्ष कहेंगे, क्योंकि वहां तक गुण पूरित प्रमाण में दिया जाता है।
ये तो एक बात बताइए ना, गुण श्रेणी शीर्ष है, उससे ऊपरी अनंत स्थिति में असंख्यात गुण हीन प्रदेश
कहाँ से पढ़ रहे हैं आप?
ये छठे पुरुष के पहली लाइन में।
हाँ,
छठे पुरुष की पहली लाइन में
76।
इसके बाद प्राचीन,
एक मिनट, पहले गुण श्रेणी शीर्ष कौन बना?
नया बना,
कांडक के नीचे वाला निषेक।
हाँ, कांडक के नीचे वाला।
हाँ, अभी आपका जो प्रश्न है,
इसके बाद प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक उत्तर उत्तर प्रत्येक स्थिति में विशेष हीन गुण प्रदेश पुंज को देता है। जो नया शीर्ष बना और जो पुराना शीर्ष थे उसके बीच में जितने दिशे के वहाँ पे विशेष हीन प्रदेश पुंज को देता है, और उसके पश्चात वाले जो है उसमें असंख्यात गुणे देते हैं, इसे कहना है ना उनका
असंख्यात गुणाहीन।
अच्छा, असंख्या गुणाहीन प्रदेश
ऊपरी मानांतर एक स्थिति में।
हाँ।
और फिर फिर टेपरिंग करेंगे, यानी यहाँ तीन बातें अलग अलग बता रहे हैं। यानी कांडक में ही वो बात है अभी।
हाँ।
के गुण श्रेणी के ऊपर शीर्ष के ऊपर कांडक है पूरा, पहले पोजीशन क्या थी और अब क्या है उसकी बात करेंगे। ऊपर की कुछ स्थिति, ये जो नए नए गुण श्रेणी के शीर्ष अलग अलग होते गए, वे ये पुराना गुण श्रेणी का शीर्ष और ये वर्तमान में, इस तरह से अभी ये पोजीशन है।
इसके बीच में जितने नए नए गुण श्रेणी शीर्ष होते गए,
ये सारे गुण श्रेणी शीर्ष नए होते गए। ये बीच में सारे गुण श्रेणी शीर्ष, ये पुराना गुण श्रेणी शीर्ष, अभी पुराने गुण श्रेणी और उसका भी ऊपर का कुछ भाग, तो ये पूरा ही कांडक में चला गया, ऊपर का पूरा कांडक हुआ, इतने सब कांडक रूप से ग्रहण किए। अब वर्तमान से लेकर यहाँ तक, ये अभी का गुण श्रेणी शीर्ष, यहाँ तक तो असंख्यात गुणाक्रम से दिया जाएगा, ये दिया जाने वाले द्रव्य की बात है। ये अभी का यानी पुराना, सबसे अपूर्वकरण के पहले समय में शुरू किया हुआ गुण श्रेणी शीर्ष, तो अभी इतना दिया ना, अभी मान लेते इतना दिया उसने, अभी ये पहला शीर्ष, यहाँ तक क्या होगा? ये हीन क्रम से दिया जाएगा, ये और यहाँ दिया, उसके ऊपर असंख्यात गुणा हीन है, परंतु वहां पर भी अभी क्या होगा, ये इसी तरह से टेपरिंग दिया जाएगा ऊपर। यानी ये नीचे अभी जो बनी है उसके शीर्ष तक, यानी कांडक के नीचे तक, अब कांडक के अंदर ही ये जो गुण श्रेणी शीर्ष था पुराना वहां तक, और फिर उसके ऊपर रिमेनिंग कांडक में, यानी यहाँ के अंत से उसका इमीडिएट ऊपर असंख्यात गुणाहीन है, फिर थोड़ा कम, फिर जब हम गुण श्रेणी तक आए उससे उसके ऊपर वाले में असंख्यात गुणाहीन, फिर वही टेपरिंग।
तो दो जगह असंख्यात गुणाहीन होगा।
हाँ, दिया जाने वाला
ग्रह। हाँ, दिया जाए
दृश्यमान में तो ऐसा एक अखंड।
हाँ, ऐसे भी।
देखो, ये फिर मैं ये 76 का सूत्र पढ़ती हूँ, जिसके बारे में अभी आपने प्रश्न पूछा था, वैसे कल हमने पढ़ा था, हिंदी में पढ़ेंगे। देखो, जो इस समय गुण श्रेणी शीर्ष है, इस समय कौन सा है? कांडक के नीचे वाला निषेक, ये इस समय गुण श्रेणी का शीर्ष है। उससे ऊपरी मानांतर स्थिति में, इसका अर्थ ये कांडक की जघन्य स्थिति है।
हाँ।
क्योंकि वहां से लेकर हमने कांडक सोचा,
कांडक को
असंख्यात गुणे हीन प्रदेश पुंज को देते, दो निषेकों के बीच में क्या है, नीचे असंख्यात गुणा दिया और उसको असंख्यात वे भाग प्रमाण दिया, दिया जाने वाले द्रव्य का प्रपोर्शन यहाँ बता रहे। इसके बाद प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थिति में विशेष हीन प्रदेश पुंज देता, यह भी बताया जाए। पहले वाला गुणश्रेणी जो अपूर्व कर्म के शुरू में शुरू की थी वहां तक, उससे ऊपरी मानांतर स्थिति में असंख्यात गुणहीन प्रदेश पुंज को देता है। वैसे वहां पर भी वे नए नए सारे गुणश्रेणी शीर्ष बने हुए थे, उसी की बात है, परंतु वहां दिया जाने वाला द्रव्य असंख्यात वे प्रमाण, क्योंकि वहां से नीचे बड़े बड़े हैं बहुत, तो वहां लास्ट में दृश्यमान द्रव्य तो टेपरिंग दिखेगा, इसलिए वहां बहुत कम द्रव्य दिया गया।
और उसके पश्चात विशेष, हाँ,
उसके ऊपरी स्थिति में विशेषहीन देता है, यानी एक एक चेक हटते हुए ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार शेष समस्त स्थितियों में उत्तरोत्तर विशेषहीन देता है, ऊपर तो घटते घटते द्रव्य दिया जाएगा। उक्त कथन का तात्पर्य यह है, दूसरा पड़ेगा, अपकर्षित किए गए द्रव्य के असंख्यात बहुभाग को स्थिति कांडक के नीचे गुणश्रेणी के आकार से निक्षिप्त कर, ये हमने देखा था, ये अभी ये गुणश्रेणी के आकार से यहाँ तक निक्षिप्त किया, फिर प्राचीन गुणश्रेणी शीर्ष तक इस तरह से गए, और फिर और ऊपर इन सभी ने वैसा दिया असंख्यात वा भाग था। देखो, स्थिति कांडक से नीचे गुणश्रेणी के आकार से निक्षिप्त कर, जो इस समय स्थिति कांडक की जघन्य स्थिति से अनंतर अधस्तन गुणश्रेणी शीर्ष है, क्योंकि सारे गुणश्रेणी शीर्ष ही है ना, स्थिति कांडक की जघन्य स्थिति के ऊपर का गुणश्रेणी शीर्ष, उससे स्थिति कांडक की अनंतर उपरिम आदि स्थिति में, आदि स्थिति ने प्रथम निषेध ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ जो स्थिति कांडक की नीचे की पहली स्थिति है, पहले निषेक है, उसके नीचे गुणश्रेणी का शीर्ष है अभी का, और उसके ऊपर की स्थिति, ये जो गुणश्रेणी शीर्ष के ऊपर की, वो क्या है, तो वो कांडक की जघन्य स्थिति कहो या निषेक, उपरिम आदि निषेक, ऊपर का प्रथम निषेक, असंख्यात गुणहीन प्रदेश पुंज को देता है, क्योंकि स्थिति कांडक की अपवर्तित होने वाली भीतरी स्थितियों में बहुत प्रदेश पुंज के विन्यास का विरोध है। यानी ये जो जिसको हमने स्थिति कांडक रूप से ग्रहण किया है वो तो अपवर्तित होने वाली स्थितियां हैं, ये तो अभाव होने वाली स्थितियां हैं, उसमें ज्यादा द्रव्य नहीं देते, मैक्सिमम अनंत असंख्यात बहुभाग द्रव्य तो नीचे दिया है गुणश्रेणी में दिया, जिसको कांडक रूप से दिया है उसमें थोड़ा द्रव्य जाएगा अंदर ही अंदर, परंतु ज्यादा नहीं जाएगा, ये बात बताना चाहते हैं। शंका वह कैसे, अब यहाँ से पढ़ेंगे आज का विषय, क्योंकि गुणश्रेणी करके शेष बचे असंख्यात वे भाग में से, क्योंकि असंख्यात बहुभाग तो नीचे कांडक के नीचे गुणश्रेणी में दिया, वो सारा द्रव्य कहाँ से आया, तो कांडक में से ग्रहण करके नीचे दिया असंख्यात बहुभाग, उसमें से शेष बचा कितना, असंख्यात वा भाग बचा, असंख्यात बहुभाग गुणश्रेणी में दिया असंख्यात वा भाग बचा, उसमें से फिर भी असंख्यात वे भाग को पृथक कर वहां प्राप्त बहुभाग को स्थिति कांडक के भीतर प्राप्त हुए अंतर्मूर्त प्रमाण गुणश्रेणी अध्वान से भाजित कर वहां प्राप्त एक खंड को विशेष अधिक कर स्थिति कांडक की आदि स्थिति में सींचता है। ये क्या कहना चाहते हैं,
जो नया शीर्ष,
ये कब गुणश्रेणी शीर्ष को इच्छा दिया, अभी यहां से कांडक है, गुणश्रेणी में असंख्यात बहुभाग दिया, असंख्यातवा भाग ऊपर दिया, उस असंख्यातवे भाग का भी दोबारा असंख्यातवा भाग अलग करो और बहुभाग को स्थिति कांडक के भीतर ये जो गुणश्रेणी का अध्वान था उसमें देना,
बहुभाग को
नीचे, यानी पहला असंख्यात बहुभाग तो नीचे की अभी वर्तमान की गुण श्रेणी में दिया, एक भाग का फिर असंख्यात बहुभाग ये नीचे जो गुण श्रेणी रूप से रचना हुई थी उसमें दिया,
ओल्ड गुण श्रेणी में जो ओल्ड गुण श्रेणी
क्यों, उसका कारण भी बताती हूँ मैं। देखो ये पुरानी गुण श्रेणी थी, उसी के अंदर वो सारे गुण श्रेणी अलग अलग बने थे, और ये प्राचीन एकदम गुण श्रेणी शीर्ष था, प्राचीन उपरिम स्थिति ऐसी थी, नहीं प्राचीन यहाँ है और अभी यहाँ तक उसने कांडक को ग्रहण किया, यहाँ तक ये बात अभी क्या होगा उसका वर्तमान समय से लेकर असंख्यात गुणा क्रम से, तो यहाँ अभी की गुण श्रेणी इतनी, ये नया दिया,
ये बहुभाग कर दिया,
ये असंख्यात बहुभाग यहाँ दिया, उसके ऊपर क्या देखते हैं, देखो
असंख्यात का भाग दिया,
अभी असंख्यात भाग का भी असंख्यात बहुभाग, स्थिति कांडक के भीतर प्राप्त हुए अंतर्मूर्त प्रमाण गुण श्रेणी अध्वान, ये गुण श्रेणी का अध्वान है अंतर्मूर्त प्रमाण, तो ये इस तरह से जो रचना हुई अभी उसको इस तरह से करनी है, और ऊपर तो उसी में थोड़ा ज्यादा होगा, अभी यहाँ तक जो थी तो उसमें थोड़ा ज्यादा होगा, पर नीचे तो इतना सारा भरना है ना, ये मार्ग
असंख्यात बहुभाग वहाँ पे
तो
दिया,
पहला असंख्यात बहुभाग यहाँ दिया, दूसरा एक भाग का असंख्यात बहुभाग यहाँ दिया,
असंख्यात बहुभाग यहाँ पे,
असंख्यात बहुभाग दूसरे असंख्यात भाग का असंख्यात बहुभाग यहाँ दिया, क्योंकि वो जो पहले गुण श्रेणी रूप से रचना थी उसको अभी हम एक गोपुच्छ बनाएंगे यहाँ पर, तो ये सारा यहाँ माल भरना चाहिए, तो वो ऊपर के असंख्यात भाग का भी असंख्यात बहुभाग यहाँ दिया। अब उसको क्या किया, ये जितना माल इधर देना है वो गुणश्रेणी अध्वान का जो काल है, गुणश्रेणी का आयाम का जो कांडक के अंदर जो गुणश्रेणी आयाम का काल है उसके जितने समय है उससे भाग दो, तो क्या मिलेगा हमें, एक एक निषेक के प्रति प्राप्त द्रव्य होगा, परंतु एक एक इक्वल नहीं है उसमें, नीचे के पहले में ज्यादा है ऊपर थोड़ा कम इस तरह से दिया है, तो उसको इस प्रमाण से भाग दो और विशेष अधिक करो और वो यहाँ पहले निषेक में दे दो, ये बात बताना चाहते हैं, थोड़ा अटपटा लगेगा, अरे बराबर है ना, पहला बहुभाग तो यहाँ दे दिया हमने उदय के समय से लेकर नई गुण श्रेणी बनी, अब उस गुण श्रेणी के पॉइंट से ऊपर तक ऐसा एक गोपुच्छ होने वाली है, तो कांडक के अंदर ही अंदर जो अपकर्षण करके द्रव्य दिया गया उस एक भाग का फिर असंख्यात बहुभाग निकाला, और ये जो सारा गुण श्रेणी का अध्वान कांडक के अंदर था उसमें दिया, तो उसमें देना है तो उसमें कितने समय है उसको हम काउंट करेंगे अंतर्मूर्त के जितने समय है, और उस अंतर्मूर्त से भाग देंगे तो एक एक निषेक के प्रति माल आएगा, परंतु सभी निषेक में तो इक्वल द्रव्य नहीं देना है, नीचे के निषेक में ज्यादा है ऊपर कम कम इस तरह से देना है, तो वहां थोड़ा सा अधिक करके यहाँ दिया, वर्तमान गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर जो पुराने गुण श्रेणी का पार्ट एंड पार्सल था, परंतु अभी जिसको कांडक का हम जघन्य निषेक कह रहे हैं उसकी बात ये बता रहे हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे, अभी आदि स्थिति में सींचता है यानी वहां निक्षेपण करता है, उसके बाद प्राचीन गुणश्रेणी शीर्ष को प्राप्त कर, ये प्राचीन गुणश्रेणी शीर्ष यहाँ ये वाला, क्योंकि नीचे से हमने उसको कांडक में ले लिया था, ये प्राचीन गुणश्रेणी शीर्ष प्राप्त कर यहाँ के बहुभाग प्रमाण द्रव्य का अंत होने तक उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्य का निक्षेप करता है, उसके बाद पृथक रखे हुए असंख्यात वे भाग प्रमाण द्रव्य को अधस्तन आयाम से संख्यात गुणे उपरिम समस्त आयाम से भाजित कर। अभी इसके ऊपर किस तरह से दिया जाएगा, अभी ये गुण श्रेणी के ऊपर से, तो अभी जितने निषेक बचे हैं यहाँ जितना भाग दिया जाएगा द्रव्य, उसको बचे हुए निषेकों के प्रमाण से भाग देंगे और उसको थोड़ा अधिक करके नीचे के निषेक में दे देंगे। भाजित कर जो एक भाग प्राप्त हो उसे विशेष अधिक करके, विशेष अधिक इसलिए करना है नीचे के निषेक में हमेशा अधिक होता है और ऊपर कम होते चला जाता है, गोपुच्छा बनती है उसकी, वहां की गोपुच्छा में सिंचित कर उससे ऊपर सर्वत्र स्थिति कांडक के अंतिम समय अति स्थापना वाली मात्र से नहीं प्राप्त हो वहां तक। अपनी भाषा में ऊपर अति स्थापना वाली को छोड़कर वहां तक सर्वत्र दिया जाएगा, ऊपर सर्वत्र लिखा ना, अंतिम समय अति स्थापना वाली मात्र से नहीं प्राप्त हो वहां तक, यानी अति स्थापना वाली के नीचे तक विशेष हीन क्रम से एक गोपुच्छा श्रेणी रूप से निक्षिप्त करता है। गोपुच्छा यानी जो होंगे ना क्रम से हीन 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 होते जाना, उसको गोपुच्छा। इस प्रकार यहाँ पर दीयमान द्रव्य की तीन श्रेणियां हो गई, तीन अलग अलग पर्व बने, परंतु दृश्यमान द्रव्य तो वर्तमान गुण श्रेणी के शीर्ष के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से दिखलाई देता है और उससे उपरिम अनंतर एक स्थिति में असंख्यात गुणाहीन होकर उससे आगे गलित शेष प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष को उल्लंघन कर प्रथम बार अवस्थित रूप से किए गए गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक विशेष अधिक ही होता है।
अच्छा, ये प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष को उल्लंघ कर दे, सब
उल्लंघ कर
ऊपर
ऊपर
नया शीर्ष जितने बने
वहाँ और अधिक होता है कहते हैं।
विशेषण विशेषित क्रम से दिया,
देखो विशेष अधिक ही होता है। प्रथम बार अवस्थित रूप से किए गए गुण श्रेणी के शीर्ष के प्राप्त होने तक विशेष अधिक होता है, इसका क्या कारण है उसका समाधान पढ़ेंगे आपको फिर मैं बताऊंगी। क्योंकि स्थिति कांडक की जघन्य स्थिति में असंख्यात गुणाहीन देकर पुनः ऊपर विशेषहीन करके इस समय दिया गया द्रव्य पूर्व में संचय रूप गोपुच्छा से असंख्यात गुणाहीन है, इसलिए उसके दृश्यमान द्रव्य के प्रति प्रधानता का अभाव है, इसलिए पिछले संचय के अनुसार ही वहाँ दृश्यमान द्रव्य होता है। ओ यहाँ क्या बताना चाहते, कुछ अलग ही बताना चाहते हैं। यहाँ तो ये बताना चाहते हैं कि भले ये दिया हुआ द्रव्य की बात करेंगे तो इसमें ऐसा दिया इसमें ऐसा दिया, परंतु ये जो ऑलरेडी यहाँ जो गुण श्रेणी रूप से रचना थी तो दिखने वाला द्रव्य कैसे दिखेगा, अभी हम थोड़ा छोटा करके बताएंगे इसको। ये गुण श्रेणी रूप से इसमें दिया हुआ द्रव्य असंख्यात हुए भाग प्रमाण दिया, परंतु ये पुरानी गुण श्रेणी है ना, गुण श्रेणी के बहुत सारे, ये ऐसे ही दिखेगा क्योंकि पहले ऑलरेडी संचित द्रव्य है, उसमें दिया कितना तो बहुत कम दिया, यहाँ बहुत ज्यादा दिया वहां बहुत कम दिया, फिर भी दिखेगा कैसे, तो पहली वाली गुण श्रेणी का कैसा ही दिखेगा, ये बताना चाहते हैं। यानी ये दिया हुआ द्रव्य और दृश्यमान द्रव्य ये दो अलग अलग हो गए इसमें, और भी
हाँ
ये नीचे, ये नीचे है और ये ऊपर है ने, वहां नहीं ऊपर नहीं वहां तक नहीं जाना, ये पहली बार जो यहाँ दिखाया था, पहली बार जो गुण श्रेणी शीर्ष बदला था अवस्थित का, पहली बार का गुण श्रेणी शीर्ष
वहां तक, वाला
हाँ, वहां तक ही असंख्यात गुना होगा।
हाँ।
ये बात कहना चाहते, और बाद में वो टेपरिंग हो जाएगा। दिन देने वाले तीन हो गए, देने के लिए तीन और दिखने के लिए दो। कौन से नीचे? नहीं, पुराना गुण श्रेणी वो कांडक में ही चला गया, प्राचीन जिसको हम पुरातन कह रहे, जो अपूर्वकरण के पहले समय में शुरू किया था वो सब उसी में चला गया। कांडक के नीचे जो है उसको हमने अभी का वर्तमान का गुण श्रेणी शीर्ष कहा।
अच्छा, तो कांडक के नीचे का है।
हाँ, उसका शीर्ष हुआ।
अब अपन ने इस बार जो कांडक लिया उसमें
नहीं, उदयादि तो उदयादि तो पूर्व में ही होगी थी, उदयादि पहले ही हुई थी। अब ये अंतिम कांडक के समय वाली ये पोजीशन है।
अंतिम कांडक में जो विशेषता जो आप बता रहे हैं, एक तो नीचे का हो गया,
ये शीर्ष हुआ, ये बाकी पूरा कांडक रूप से ग्रहण किया। हाँ, अब ये कांडक की पहली स्थिति यहाँ पर है। कांडक की जो जघन्य स्थिति है उसके ऊपर कुछ जाके पुरातन गुण श्रेणी का शीर्ष मिलेगा, उसके ऊपर जो अलग अलग शीर्ष बने थे वे मिलेंगे, और उसके ऊपर उपरीतन स्थिति मिलेगी।
तो अभी कांडक के अंदर ही एक पुरातन गुण श्रेणी है और नए गुण श्रेणी शीर्ष है और बाकी ऑर्डिनरी बड़े हुए। तो ये तीन जो अपन बदल तीन श्रेणियां कहाँ बना रही, चार हो गई अपनी।
ये एक वाली हो गई वर्तमान की, दूसरी नहीं, वो सारे गुण श्रेणी वाली वो दूसरे में लेना, पुरातन गुण श्रेणी, और ये उपरीतन वाला तीसरा ले लेना।
तो पुरातन और नए गुण श्रेणी,
हाँ वो सब सब ले लेना।
उसमें जो है एक बात का संख्या दो कर जाएगा।
हाँ, तीन पर्व होते यहाँ, क्या तीन श्रेणियां होती कहा ना इन्होंने, यानी द्रियमान द्रव्य की तो तीन श्रेणियां बताई, दृश्यमान की तो वर्तमान गुण श्रेणी के शीर्ष हो तक, वहां तक तो असंख्यात गुणा यहाँ लिखा ना 100 नंबर के पॉइंट पर, 77 पे देखो, दृश्यमान द्रव्य तो मिला, वर्तमान गुण श्रेणी के शीर्ष के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से दिखलाई देता है, उससे ऊपरी मनंतर एक स्थिति में असंख्यात गुणाहीन होकर उससे आगे गलित शेष प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष को उल्लंघन कर प्रथम बार अवस्थित रूप से किए गए गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक विशेष अधिक ही होता है। पहले विशेषहीन बताए, फिर विशेष अधिक क्यों कहा?
दृश्यमान की बात है,
यानी एक ही निषेक में असंख्यात गुणाहीन होकर फिर ऊपर ऐसा ज्यादा हो रहा है, दृश्यमान की बात करे वो। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इस तरह से होगा, यहीं पर बताना मैं, ये अभी का गुण श्रेणी शीर्ष,
नया गुण श्रेणी शीर्ष,
उसके ऊपर क्या पोजीशन है
विशेष,
तो यहाँ नहीं असंख्यात भाव, असंख्यात भाव, असंख्यात गुणा ही
वो तो दियमय द्रव्य की बात है,
दृश्यमान भी, दृश्यमान यहाँ से कैसा दिखेगा, तो ये यहाँ तक ऐसा आया तो यहाँ से ऐसा दिखेगा। हाँ, ये ऐसा होगा, ये अभी का
इतना दिया,
अभी ये पूर्व का था, पूर्व का इतना ही था ना, उसमें थोड़ा सा देकर भी इसके इतना तो नहीं हो गया,
एक गुण श्रेणी दिखी,
ये गुण श्रेणी हुई। हाँ, और ये यहाँ के ऐसे दिखे,
तो दूसरी गुण श्रेणी हुई पहली गुण श्रेणी से थोड़े अंदर, थोड़ा
ये अंदर हो
जाए, अंदर हो जाए,
ये अंदर हो, दिखने में भी असंख्यात भाग प्रमाण दिखेगा उसमें,
और उसके ऊपर भी वो जुड़ा वाला शेष है,
विशेष अधिक होगा।
हाँ,
प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष तक देखो ना,
हाँ
वर्तमान, देखो आगे गलित शेष प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष को उल्लंघन कर प्रथम बार अवस्थित रूप से किए गए गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक विशेष अधिक है। यानी ये प्राचीन गुण श्रेणी शीर्ष था
अभी
और उसके ऊपर का एक निषेक ऊपर
हाँ।
का एक निषेक भी उसमें ले लेना, यानी सबसे पहला अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष भी उसमें लेना, वहां तक ये विशेष अधिक हो जाएगा। गुणित प्रमाण में नहीं लगाना, विशेष अधिक लगाना। हम थोड़ा ऐसा देखेंगे, ज्यादा ऐसा ज्यादा बाहर नहीं निकालेंगे उसे। विशेष अधिक हो गया, फिर उसके आगे गलित शेष प्राचीन गुण श्रेणी को उल्लंघन कर, ये हो गया विशेष अधिक होता है। उसके आगे समाधान के नीचे देखेंगे
उसके आगे यहाँ पे जो आपने जो दो नंबर लिखा है वो तो जो प्रति समय
नहीं, नहीं, वो दो नंबर वो दीयमान के लिए दिया था समय। अभी उसकी बात मत सोचो, अभी दृश्यमान की बात चल रही है। पहले तो ये गुण श्रेणी रूप से दिया असंख्यात गुना, उसके ऊपर यहाँ असंख्यात विभाग हीन दिखा, फिर ये प्राचीन जो पहले में पहले शुरू की थी तो विशेष अधिक दिखा ऐसा। उसके बाद समाधान की पांचवी लाइन पढ़ रही हूँ, ऊपर सर्वत्र गोपुच्छा श्रेणी में विशेष हीन ही दृश्यमान द्रव्य होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, यहाँ से लेकर ऊपर सर्वत्र ये ऐसा। यानी अभी ऐसा दिखेगा,
पहले एक गुण श्रेणी उसके अंदर दूसरी गुण
ये वाली वर्तमान की
ऊपर दूसरा दूसरी गुण श्रेणी।
अभी ये गुण श्रेणी गलितावशेष की पहला गुण श्रेणी शीर्ष विशेष अधिक लेना, विशेष अधिक में थोड़ा ऐसा ही लेना, ज्यादा ऐसा एकदम असंख्यात गुणा नहीं लेना, थोड़ा अधिक, और फिर ऊपर सर्वत्र इस तरह से इस तरह दिखेगा। इसके संदृष्टि बनाते बनाते हैरान हो गया। हाँ यानी अवस्थित वाला पहला गुण श्रेणी शीर्ष और ऊपर अति स्थापना वाली छोड़ देना। आपकी किताब में लिखा तो है, मेरे पास कुछ नहीं लिखा, लिख लो आप लोग। इसका क्या कारण है अभी इसको पढ़ेंगे समाधान। क्योंकि स्थिति कांडक की जघन्य स्थिति में, यानी वर्तमान शीर्ष के ऊपर की पहली स्थिति, कांडक की जघन्य स्थिति में असंख्यात गुणाहीन देकर पुनः ऊपर विशेषहीन करके इस समय दिया गया द्रव्य, ऊपर तो विशेषहीन दिया था और आप कहते यहाँ तो विशेष अधिक दिख रहा है, दिखने में विशेष अधिक दिख रहा है ये, और दिया था विशेष हीन क्रम से, तो कहते हैं पूर्व में संचय रूप
गोपुच्छा से
असंख्यात गुणा हीन है। अभी विशेष हीन दिया है परंतु पहले वाली गोपुच्छा तो
बहुत बड़ी है,
बहुत बढ़ती गई थी,
गुणश्रेणी
विशेष अधिक वाला प्रमाण रहेगा। पहले असंख्यात गुणा अधिक अधिक था,
अभी
विशेष अधिक रह
जाएगा,
इसलिए उसकी दृश्यमान द्रव्य के प्रति प्रधानता का अभाव है। यानी दिए जाने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा सॉरी विशेषहीन है, फिर भी पहले ऑलरेडी वहां संचित द्रव्य बहुत ज्यादा है, उसकी अपेक्षा से ये विशेषण ये माइनस करेंगे तो भी विशेष अधिक का प्रमाण चालू रहेगा। इसलिए पिछले संचय के अनुसार ही वहां पर दृश्यमान द्रव्य होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। बहुत बहुत विस्तार से अच्छा बताया। हाँ, उससे ऊपर सर्वत्र गोपुच्छा श्रेणी में विशेष हीन ही दृश्यमान द्रव्य होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वहां दूसरा प्रकार संभव नहीं है। अब आगे दूसरा सूत्र पढ़ें। विधीय समय, ये पहले समय की बात हो गई। विधीय समय जम उक्कीरदि पदेशगम तंपि एदेनेव कमेण दिज्यति। इतना ही सूत्र है, क्या और है?
आगे
एवं ताव जाव थिदिखंड या उक्कीरण धाय दूचरी में समयोक्ति। यानी अंतिम स्थिति कांडक की बात चल रही है। पहले समय में किस तरह से दिया जाता है वो बताया, दूसरे तीसरे वगैरह इसे इसी क्रम से दिया जाएगा। कब तक कि स्थिति कांडक वो उत्कीर्ण काल का द्विचरम समय प्राप्त होने तक। अब हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरे समय में जो प्रदेश पुंज उत्कीर्ण किया जाता है कांडक में से ग्रहण करके असंख्यात बहुभाग गुण श्रेणी में दिया जाएगा, और फिर ऊपर विशेषण एक निषेक में असंख्यात गुण है, फिर विशेषण विशेषण जो कुछ है उसे भी इसी क्रम से देता है। इस प्रकार स्थिति कांडक के उत्कीर्ण काल के द्विचरण समय तक जानना चाहिए। यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इस स्थल पर सर्वत्र नानात्व अर्थात भेद के बिना प्रवृत्त प्रथम समय की प्ररूपणा स्पष्ट उपलब्ध होती है। इतनी विशेषता है, यानी प्ररूपणा तो वैसे ही करेंगे, असंख्यात बहुभाग तो गुण श्रेणी में और ऊपर असंख्यात्वा भाग, तो कहते विशेषता क्या है? प्रति समय असंख्यात गुणे द्रव्य का आकर्षण कर, पहली फाली से दूसरी फाली असंख्यात गुणा, उससे तीसरी फाली असंख्यात गुणा, इस क्रम से यथोक्त विन्यास के अनुसार। यथोक्त ने जैसा बताया है वैसा विन्यास, वैसे सारा प्रोसेस होगा, वैसे सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके अनुसार निक्षेप करता है ऐसा कहना चाहिए। और गलित शेष आयाम इस समय उदयादि गुण श्रेणी निक्षेप है। अब कौन सा है? उदयादि तो है परंतु अभी गलित शेष है। पहले 8 वर्ष बाकी थे तो उदयादि अवस्थित हुआ था, अब उदयादि गलित शेष होगा। हाँ, वो समय ज्यादा रखे थे ना हमने, तो अंतिम समय में कृत कृत्य वेद कितना रह जाएगा? तो उदयादि गुण श्रेणी अपन वो कैसे गलित शेष है, क्योंकि ऊपर जितना हमने कांडक रूप से ग्रहण किया है वो पूरा ही नष्ट होने वाला है, और बाकी वो गुण श्रेणी नीचे नीचे चली आएगी, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के पतन होने पर जो अर्थ विशेष है उसे सूत्र के अनुसार बतलाते हैं। अभी क्या पोजीशन होगी? वो अंतिम फाली खेलेगी और यहाँ कृतकृत्य वेदक मात्र निषेक बचेगी। थिदिखंड यस्य चरिम समये उक्कड्डमानो उदये पदेशगम थौवम देदी। क्योंकि नीचे गुणश्रेणी रूप से अभी भी दिया जाएगा वही चरम फाली का भी द्रव्य। से काले असंख्येज गुणम देदी, यानी प्रति समय असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाएगा। एवं जाव गुणश्रेणी शीर्षयम ताव असंख्येज गुणम। गुणश्रेणी शीर्ष तो अभी वो फिक्स है, वही नीचे नीचे आ रहा है, निषेक कम हो रहे हैं, अभी उसमें असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाएगा। हिंदी पढ़ेंगे। स्थिति कांडक के अंतिम समय में अपकर्षण करता हुआ उदय में अल्प प्रदेश पुंज को देता है, तदनंतर काल में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है। इस प्रकार गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है। क्योंकि ये चरम फाले में बहुत सारा द्रव्य उसी में पड़ा। यहाँ पर अपकर्षित होने वाले द्रव्य का प्रमाण अंतिम फाली के महात्म्यवश, यानी अंतिम फाली बहुत बड़ी है, उसमें द्रव्य बहुत ज्यादा है, उसके कारण कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबुद्ध प्रमाण। हमने तो अभी तक देखा इतना सारा द्रव्य नीचे नीचे आता गया, उतना तो उसके गुणश्रेणी रूप से रचना भी हुई, वो उदय में आकर असंख्या समय प्रबुद्ध भी किरे, फिर भी कहते असंख्या तो अभागी नष्ट हुआ अभी तक। तो वो अंतिम फाली कितनी है, तो कुछ कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबुद्ध, यानी सत्ता का पूरा ही द्रव्य करीबन, थोड़ा कम,
कुछ कम से
ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुणश्रेणी का समस्त द्रव्य अंतिम फाली के द्रव्य को देखते हुए असंख्यात गुणाहीन देखा जाता है। अभी वो असंख्यात गुणाहीन है जो गुणश्रेणी में दिया था, जो अभी कृतकृत्य में जो बाद में तो उसमें आ जाएगा वो अंतिम फाली का द्रव्य, उसके पहले समय की बात चल रही है। इसको ग्रहण कर कृतकृत्य सम्यक्व के काल प्रमाण अधस्तन निषेकों में प्रदेश विन्यास करता हुआ, प्रदेश डालता हुआ, निक्षेपण करता हुआ, उदय में अल्प प्रदेश पुंज को देता है, क्योंकि यद्यपि वह असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण है तो भी उसके ऊपरी निषेकों में सिंचित होने वाले द्रव्य की अपेक्षा अल्प होने में विरोध का अभाव है। जब अल्प कह रहे हैं, अल्प का भी प्रमाण असंख्यात समय प्रबद्ध है, फिर भी उससे भी असंख्यात गुणा ऊपर के निषेक में, उससे भी असंख्यात गुणा तीसरे निषेक में, इस तरह से गुणश्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणा होगा। इसको ग्रहण कर, ये हो गया, उदय में अल्प प्रदेश पुंज को देता है क्योंकि ऊपर सिंचित होने वाले के लिए उसकी अपेक्षा से अल्प है। अभी लास्ट लाइन, तदनंतर समय की ऊपरी स्थिति में असंख्यात गुणा देता है, गुणकार क्या है, तो कहते तत्प्रायोग्य पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण अंक गुणकार है। इस प्रकार द्विचरम निषेक के प्राप्त होने तक जाना चाहिए। इतनी विशेषता है अधस्तन अनंतर निषेक के गुणकार से, उपरिम अनंतर निषेक का गुणकार सर्वत्र असंख्यात गुणी वृद्धि रूप से ले जाना चाहिए, यानी पहले निषेक से असंख्यात गुणा, दूसरे में, दूसरे से तीसरे में असंख्यात गुणा, चौथे में, कहाँ तक देना, द्विचरम तक, एक ऊपर का निषेक छोड़कर। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान पूर्वाचार्यों के व्याख्यान से जाना जाता है। इसके बाद द्विचरम निषेक से गुणश्रेणी शीर्ष में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है। अब यहाँ पर गुणकार क्या है, ऐसी आशंका होने पर उसका निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। कहेंगे तो पल्ले का असंख्या तो अभाग, परंतु उसका विशेष निर्णय करने के लिए यहाँ उसका प्रमाण बताएंगे। गुणगारो भी दुचरिमाए ठिदिये पदे सग्गा दो चरमाए ठिदिये पदे सग्गस असंख्य जानी पलिदोमस वग्गमूलानी, यानी पढ़म वग्गमूलानी, पल्ले के प्रथम वर्गमूल को असंख्या गुणकार, उतना गुणकार अंतिम निषेक के लिए गुणकार इतना होगा, ज्यादा, सबसे ज्यादा गुणकार अंतिम निषेक में होगा, हर निषेक में नहीं बदलेगा। द्रव्य का पहले उदय के समय में जितना द्रव्य दिया उसको असंख्यात गुणा करो तो दूसरे समय का, उसको असंख्यात गुणा करो तो तीसरे समय का, उसको असंख्यात तो चौथे समय का, जैसे हम 1, 4, 16, 64 कहते थे उसकी बात। अब द्विचरण से, हाँ द्विचरण से चरम में गया तो वहाँ गुणकार कितना है, तो पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल, पल्ले के प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुणा करो इतना, वो भी पल्ले का असंख्यात भाग ही है। तो हमने ऊपर देखा सूत्र, अभी नीचे हिंदी पढ़ेंगे। द्विचरण स्थिति के प्रदेश पुंज से, द्विचरण स्थिति यानी द्विचरण निषेक, अंतिम स्थिति के प्रदेश पुंज का गुणकार पल्लवपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। देखो द्विचरण स्थिति में जो प्रदेश कुंज निक्षिप्त होता है उसे देखते हुए गुण श्रेणी की अंतिम अग्र स्थिति में निक्षिप्त होने वाले द्रव्य का जो गुणकार है वह न तो पल्लवपम के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात भाग है और न ही अन्य है, किंतु पल्लवपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है, यह इनसे जनाया गया है। शंका, यहाँ पर इतना बड़ा गुणकार किस कारण से हो गया? समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीचे निक्षिप्त किया गया द्रव्य अंतिम फाली के द्रव्य को पल्लवपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूलों से भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण स्वीकार किया गया है। इस कथन द्वारा अधस्तन समस्त गुणकारों को पल्लवपम के तत्प्रायोग्य असंख्यात वे भाग प्रमाण वे करना। सूचित किया गया जानना चाहिए, क्योंकि उन गुणकारों को पल्लवपम के असंख्यात प्रथम वर्ग मूल प्रमाण होने पर कर्मस्थिति के भीतर संचित हुए द्रव्य के अंगुल के असंख्यात वे भाग समय प्रबद्ध प्रमाण होने का अति प्रसंग प्राप्त होता है। इसलिए अंतिम गुणकार ही, यानी नीचे ये गुणकार नहीं हो सकता, ये बात बताना चाहते हैं। अभी तक जो हमने देखा था, हमेशा नीचे असंख्यात बहुभाग और ऊपर एक भाग ऊपर देते थे और नीचे असंख्यात बहुभाग, तो ये तो अभी तो ये पूरा ही द्रव्य नष्ट होकर नीचे ही पूरा आने वाला है। तो एक निषेक छोड़ो अंतिम, उसकी संदृष्टि ऐसी बनाई है पुस्तक में जो लिखी है, अंतिम एक निषेक को ऐसा दिखाया उन्होंने और नीचे के जो सारी जो गुण श्रेणी वो इस तरह से बताई। तो यहाँ कितना गुना गुना, तो उसके लिए वो हम देखते हैं 1, 4, 16, 64 और अंक संदृष्टि की अपेक्षा वो गुणकार है वहां पर। पल्ले के असंख्यात भाग गुना गुना करते चले जाएंगे और यहाँ पर कितना है प्रथम वर्गमूल असंख्यात प्रथम वर्गमूल, ये द्विचरम निषेक और ये चरम निषेक, इसमें गुणकार का प्रमाण क्या है वो बहुत बड़ा है, इतनी बात बताना
चाहते
नहीं वो हो जाएगा ऐसा कहते हैं, आपने नहीं समझा?
नहीं नहीं, हाँ वो हो जाएगा इसे, वो नहीं होता है।
यदि नीचे वो गुणकार मानेंगे तो की बात है, नीचे यदि इतना बड़ा गुणकार गुणित प्रमाण में ऐसा मानते चले जाएंगे, कौन सा
कितना गुणा गुणा होते वो
प्रथम वर्गमूल प्रथम वर्गमूल प्रथम वर्गमूल करते गुणा जाएंगे तो अंगुल का संख्या का भाग हो जाएगा पूरा। तो अंतिम गुणकार ही पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है और नीचे के सभी यथा योग्य पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। ये दो का डिफरेंस का समझ में है? नीचे के जो गुणकार है उसको भी पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण कहेंगे, यथा योग्य है, परंतु जो अंतिम गुणकार है द्विचरम निषेक और अंतिम निषेक में वो असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है।
पल्ले के नीचे भी ऐसे ही देखा ना कि पल्ले के प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुणा करेंगे इतना गुणकार है,
अभी नहीं द्विचरण से अंतिम में ही उतना है।
अच्छा, द्विचरण से अंतिम में इतना है,
उतना है। देखो ये फिर पढ़ते हैं।
अच्छा,
सेकंड लाइन, यानी अधस्तन समस्त गुणकार जो है वो यथायोग्य पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है, अंतिम गुणकार है वो पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। सेकंड लाइन में 80 पृष्ठ पर, क्योंकि उन गुणकारों को उन्हें नीचे वाले गुणकारों को यदि हम पल्लवपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण मानेंगे तो कर्मस्थिति के भीतर संचित हुए द्रव्य, इतने काल में कितना द्रव्य संचित हुआ ऐसा मानना पड़ेगा, तो कहते अंगुल के असंख्यात वे भाग समय प्रमाण होने का प्रसंग आएगा, और इतना होता नहीं है, डेढ़ गुना नहीं होती है, और एक गुना नहीं पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण होती है। इसलिए अंतिम गुणकार ही लगाया, इतना बड़ा गुणकार मात्र अंत में ही है, अंतिम गुणकार ही पल्लोपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। किंतु अधस्तन समस्त गुणकार पल्लोपम के तत्प्रायोग्य असंख्यात वे भाग प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ। यहां सूत्र में आया हुआ अपि शब्द अधस्तन गुणकारों के भी पल्लोपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण को सूचित करता है, ऐसी किन्हीं की आशंका है, किंतु वह योग्य नहीं, क्योंकि वह युक्ति और सूत्र बाह्य है।
पर पहले वो बताया कि पल्ले का प्रथम वर्गमूल गुणा असंख्यात ऐसे होता है, और अभी उसका निषेध कर रहे हैं।
कहाँ बताया?
आगे के पेज पे हमने पढ़ा था ना,
देखा,
मैं इसे समझा था, पल्लोपम के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात हुआ, अच्छा होगा। अच्छा, ये प्रथम वर्गमूल का असंख्यात वा भाग है, न अन्य ही है।
एक सौ तीनवा,
हाँ, द्विचरम। अच्छा, वो भी द्विचरम स्थिति की बात ही है।
द्विचरम स्थिति में जो प्रदेश कुंज निक्षिप्त होता है
उससे निक्षिप्त होता है,
उसकी अपेक्षा से, उसके कंपैरिजन में अंतिम स्थिति में जो निक्षिप्त होता है वह प्रथम वर्गमूल के असंख्यात भाग नहीं है, अन्य भी नहीं है, परंतु कितना है, तो पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। उसी की तो बात चल रही है, द्विचरम से चरम में कितने गुना है, यही बात तो चल रही है। ख्याल में कुछ आ रही बात?
हाँ, हाँ।
देखो, नीचे का गुण श्रेणी का अध्वान मान लेते हम 20 समय है, और ये अंतिम समय 21वां अलग रखो।
हाँ।
तो पहले उदय में जितना दिया, दूसरे समय में उससे मान लेते चार गुना लिया, चार गुना चार, चार 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 गुना करते गए, अंतिम में 20 से 21 में कितने गुना हुआ, चार गुना मत करो, 64 गुना करो,
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन हो गया।
ये दो पर्व यहाँ हो गए, अभी तक कैसे हो रहा था, अभी अकेला एक निषेक अलग निकाला है, और नीचे समान रूप से चार गुना चार गुना चार गुना हो रहा था, लास्ट निषेक एकदम 64 गुना करो ना।
हाँ।
इतनी बात बताना चाहूँ,
ये 64 गुना हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे 64 गुना हो गया?
डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, दिए जाने वाले द्रव्य की बात है, जो अंतिम स्थिति कांड का घात करके नीचे आया है उसकी बात है। कितना द्रव्य कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसकी बात चल रही है। असंख्यात गुना तो है, परंतु
हाँ।
असंख्यात का प्रमाण बहुत बड़ा है,
बड़ा
है। इसमें अभी तक जो हम अलग 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 पर्व कर रहे थे उसमें गुण श्रेणी का एक पर्व अलग था,
हाँ।
पुराने शीर्ष तक का एक पर्व अलग था, उपरिम पर्व अलग था, यहाँ दो ही पर्व किए, पूरे सभी निषेक एक बाजू और एक अंतिम निषेक एक बाजू, उसको दूसरा पर्व कहा है यहाँ पर, ये बात यहाँ लिखी नहीं है। मैं अभी वो संदृष्टि अधिकार के आधार से बता रही हूँ आपको, लब्धिसार का जो अभी मैंने किया है उसे मैं ऐसी फिगर्स भी वहां बनाई है, एक अंतिम निषेक को उन्होंने अलग बताया है, ये राउंड किया है वो एक निषेक बताया पूरा, और नीचे ग्लास के आकार का बताया वो पूरे बाकी उन्होंने।
तो पाली रूप जो घात होता है असंख्यात भाग असंख्यात भाग, और लास्ट वाली जो असंख्यात बहुभाग है, इसी तरह यहाँ पे
नहीं, वो असंख्यात बहुभाग जो नीचे आया है वो हाँ, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन,
वो बराबर है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही है कि नीचे नीचे असंख्यात भाग असंख्यात भाग
और भाग में असंख्यात गुणा
असंख्यात गुणा, और ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट डिशे पे जो भाग जाता है वो असंख्यात बहुभाग है, इसे ले सकते हैं। हाँ, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये असंख्यात प्रथम वर्गमूल बताए और वो पल्ले का असंख्यात भाग बताए,
सभी का कथन पल्ले का असंख्यात भाग ही होगा।
हाँ।
अभी जो कुछ सारा नीचे आया है,
हाँ।
अभी सारा नीचे ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है, अभी ऊपर कहीं जाने का सवाल नहीं है, सारा का सारा नीचे आया है, सबसे नीचे कितना है, हम
पहले
बताए ना,
पहले
छोड़ो, हमने नीचे चार गुना दिया और लास्ट में चौसठ
गुना दिया, बस
इतनी बात है यहाँ पर। देखो शंका, यदि ऐसा है तो सूत्र में आया हुआ अपि शब्द निष्फल है, क्योंकि वहां लिखा ना उसमें भी अपि यानी भी, तो वहां भी वही प्रमाण लगा लो नीचे भी, अगर वो नहीं लगाते तो अपि शब्द ही बेकार का है, क्यों डाला उसमें, उसका समाधान। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनुक्त का समुच्चय करने वाला, अनुक्त का यानी जो नहीं बताया है उसको भी इंक्लूड करने वाला, गर्भित करने वाला, वह अधस्तन गुणकारों के अवस्थित भाव के निराकरण द्वारा अनंतर अधस्तन गुणकार को देखते हुए अनंतर उपरिम गुणकार के असंख्यात गुणा होने का सूचक है, इसलिए उसकी सफलता देखी जाती है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ, तो कहते हैं कि ये जो नीचे के गुणकार के ऊपर का गुणकार असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा है, इसलिए वहां पर भी वो सूत्र सफल है, ये बात बताना चाहते हैं। अथवा समुच्चयार्थक यानी पूरा समुच्चय रूप से यहाँ उसको ले लिया, अपि शब्द से अंतिम स्थिति कांडक की प्रथम फाली से लेकर सर्वत्र ही द्विचरण समय की गुणश्रेणी गोपुच्छा से गुणश्रेणी शीर्ष में दिए जाने वाले द्रव्य का गुणकार पल्यपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण होता है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। अपि शब्द से दो प्रकार से उन्होंने अर्थ किए, एक अर्थ होता है अभी तक पहली फाली दूसरी फाली तीसरी फाली जो नीचे आती गई है वहां भी वो अंतिम गुणकार इतना बड़ा था, ये बात बताना चाहते हैं, क्योंकि वहां उस प्रकार का गुणकार स्पष्ट रूप से पाया जाता है। अंतिम केवल अंतिम फाली नहीं, पहली फाली दूसरी फाली अंतिम
सभी फाली का भी डिस्ट्रीब्यूशन यही अपेक्षित होगा।
इस प्रकार अंतिम स्थिति कांडक की प्ररूपणा समाप्त हुई। ये अंतिम स्थिति कांडक में जो कुछ विशेषता, एक तो वो तो उसका कांडक बहुत बड़ा था और अभी जो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अभी अंतिम कांडक है, इसके बाद तो कांडक रूप से नहीं होगा
कुछ,
और वो किस रूप से दिया जाता है उसकी भी बात बता दी। यहीं पर यानी अभी अंतिम फाली गिनी ना, अनिवृत्तिकरण की भी समाप्ति जाननी चाहिए। ये अनिवृत्तिकरण कब शुरू हुआ था प्रेरणा बहन, बहुत अच्छा, क्योंकि हम लाख
पृथक्त्व लाख
पृथक्त्व लाख सागर रही थी शेष, यानी पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना होने के बाद तीन करण मांडे, अधप्रवृत्त अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो अधकरण अपूर्वकरण में तो वो सारी बातें बताते स्थिति कांडक वगैरह शुरू हुए थे, फिर दर्शन मुनि की पूरी स्थिति कैसे घटती गई तो हमने देखी, फिर दुरापकृष्टि तक आए, फिर कैसे कांडक हुए, तो फिर मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य पहले में पहले सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो गया, फिर सम्यक मिथ्यात्व का होते होते अंतिम जब कांडक किया तब आठ वर्ष प्रमाण रह गया, वही अनिवृत्तिकरण चल रहा है,
तभी सम्यक मिथ्यात्व चला गया और आठ वर्ष का हो गया,
तभी आठ वर्ष में भी कांडक होते 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 अंतिम कांडक तक हो गया। अंतिम कांडक अभी जब अंतिम फाली खीरी तो अनिवृत्तिकरण पूरा हुआ यहाँ पर।
तो यहाँ पे मरण नहीं हो रहा है, ये अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक नहीं होगा ऐसे बता रहे हैं।
हाँ, वहां तक मरण नहीं होगा, अभी कहाँ बताया है,
नहीं मैं कृतकृत्य वेदक के काल में मरण होता है,
हाँ,
उसके पहले मरण नहीं होता है, तो ये अनिवृत्तिकरण काल तक मरण नहीं होगा।
देखो इससे आगे संकलेश और विशुद्धियों का परावर्तन देखा जाता है। अब तो क्या है, अनिवृत्तिकरण है तो स्टीप राइज, अभी तक समान है फिर भी विशुद्धि बढ़ती गई थी, अब क्या होगा, उतनी रहेगी, कम होगी ज्यादा होगी नहीं, कम ज्यादा हो सकती है। संकलेश और विशुद्धियों का परावर्तन
बदलना,
और इससे आगे करण परिणाम निमित्तक स्थिति कांडक घात आदि कार्य विशेष नहीं उपलब्ध होते। करण परिणाम अभी समाप्त हो गया, उसका कार्य जो कुछ है ना अन्य, अभी तो निषेक बाकी के जो छूटना है, क्षायिक होना है, वो सब हो जाएगा निष्ठापन का कार्य। अभी उसके लिए फिर दोबारा कुछ करण की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए यहाँ से आगे निष्ठित क्रिया वाले इसके कृतकृत्य भाव के कथन करने के लिए आगे का सूत्र किया आया है। चरिमे ठिदिखंडये निठिदे कदकरण ज्योति भण्णदे, अंतिम स्थिति कांडक के समाप्त होने पर यह जीव कृतकृत्य कहा जाता है। ये सारे कार्य कर चुका भी।
खाली एक बार हम लोग आगे का जो देखा है, एक बार खाली आप बता देंगे तो थोड़ा और
क्या 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 कौन सा
अवस्थित हो गया पीछे, वो शीर्ष है वो ऊपर पर जो पुराना शीर्ष था उसके और जोरदार अवस्थित शीर्ष।
आपका ऐसा कहना है, पहले की बातें थोड़ी बता दो। जब 8 वर्ष प्रमाण सम्यक प्रकृति की स्थिति शेष रही तब क्या विशेषता हुई थी? एक तो अनुभाग के कांडक रुक गए, अनुसमयापवर्तन शुरू हुआ। दूसरी बात, स्थिति कांडक का प्रमाण अंतर्मुक्त हुआ, पहले पल्ले का असंख्यात भाग था। और तीसरी बात क्या हुई, तो अभी गुण श्रेणी का कुछ विशेष हो गए। अभी तक क्या थी? अभी जो अपूर्वकरण के शुरू में जो शुरुआत हुई थी वो गलितावशेष थी। गलितावशेष यानी नीचे नीचे, परंतु उसका शीर्ष बदलता नहीं था।
शीर्ष
वही का वही था, यानी ऊपर के निषेक आकर उस गुण श्रेणी में ज्वाइन नहीं होते थे। गुणित प्रमाण में यहाँ तक ही दिया जाता था। अब इस समय नई बात क्या हुई कि उदय के समय से लेकर नए, पहले क्या था, उदयावली को छोड़कर ये गुणित प्रमाण में दिया जाता था। अभी उदय के समय से लेकर गुणित प्रमाण में दिया जाएगा, ये उदय के समय से लेकर शुरू हो जाएगा।
ये लास्ट खंडक होता है तभी ये शुरू हो जाता है, नहीं ये उदयावली
8 वर्ष जब बाकी रहेंगे
तभी पहले
वो जो सारी सम्यक मिथ्यात्व की जो यहाँ अपकर्षित द्रव्य दिया जाएगा वो किस विधि से दिया जाएगा? उदय के समय से लेकर दिया
गुणश्रेणी रूप
और वो गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा।
और उसी समय
उदयादि अवस्थित कहेंगे, ये उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी शीर्ष हुआ। तो ये गुणश्रेणी शीर्ष अभी ये एक 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 ऊपर चला जाएगा। अब ये अवस्थित है, ऊपर का एक एक निषेक इसमें ज्वाइन होता चला जाएगा, यानी हर समय नया नया माल ये गुणित प्रमाण से दिया जाएगा ही जाएगा। एक एक निषेक यहाँ वर्तमान में नीचे से कट होगा
और
ऊपर का एक एक निषेक उसमें ज्वाइन होगा। ये सारी ऐसी गुणश्रेणी शीर्ष बनते चले जाएंगे ऊपर ऊपर, कब तक? वो सारा अंतिम स्थिति कांडक के प्राप्त होने का अंतिम फाली कितनी ग्रहण करेगा वो, तो ये तो नीचे आए हैं ना सारे। ये पुराना पहले में पहले गुणश्रेणी शीर्ष था, ये बाद में और बढ़ते गए, ये बहुत सारे हो गए ऐसे।
ये जो नए नए गुणश्रेणी शीर्ष हुए वो पुरातन जो अपूर्वकरण के समय में जो शीर्ष था,
ये शीर्ष था।
अभी ये नए नए
ये सारे ऊपर ऊपर हो गए, शीर्ष हो गए ऊपर। अंतिम फाली जब फिरती है तो अंतिम स्थिति कांडक, फाली नहीं अंतिम स्थिति कांडक, वो कितना ग्रहण किया? तो ये सबसे प्राचीन गुणश्रेणी शीर्ष, उसके नीचे के कुछ निषेक,
क्योंकि घात हो जाएगा,
ये इतना ही था। ये बढ़ते, ये भी बढ़ गया ना बाद में, उसमें भी माल आता गया है। तो यहाँ तक ऊपर का पूरा ही ऐसा कांडक रूप से ग्रहण किया। अब यहाँ जो कांडक पहली फाली दूसरी फाली नीचे आती गई तो वो किस रूप से दी, और इसके नीचे कितना है कृतकृत्य काल प्लस कांडकोत्कर्ष का, इस विधि से। अब ये कांडक के नीचे का जो निषेक है वो अभी का गुणश्रेणी शीर्ष बनेगा,
अभी
नया गुणश्रेणी शीर्ष होगा। तो ये जो पहली फाली दूसरी फाली तीसरी फाली नीचे सर्वत्र ही गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा, कब तक? अंतिम फाली तक। अंतिम फाली का द्रव्य नीचे आएगा वो भी गुणित प्रमाण में दिया जाएगा, परंतु उसमें ये ऐसी रचना है, नीचे से लेकर द्विचरम समय तक वो तो गुणित क्रम से दिया ही गया है, आगे भी गुणित क्रम से ही है, परंतु वो लास्ट दो निषेकों में जो गुणकार का प्रमाण है वो बहुत बड़ा है।
पहले के प्रथम असंख्यात
प्रथम वर्ग में बताए।
सो यहाँ पे जो गुणश्रेणी शीर्ष बने अपूर्वकरण के पहले समय में बने तो वो बीच वाला है,
वो तो कब का चला गया, ये ऊपर
नहीं,
है।
हाँ वो चला गया, पर वो सब पहले समय में प्याकुरकरण के पहले समय में जो शीर्ष था वो बीच में है।
हाँ।
अभी जो नया एकदम शीर्ष बना
वो
एकदम नीचे वाला,
ये अभी बनाया, हाँ। ये कांडव के नीचे है।
हाँ, और प्रति समय जो नए नए जो शीर्ष बनते गए वो उसके ऊपर भी बने।
हाँ, ये यहाँ सारे बने थे
जिसका घातन था,
ये सब कांडव के अंदर चले गए। इसलिए वहाँ देते समय द्रव्य दिया असंख्यात गुणाहीन असंख्यातवे भाग,
हाँ।
फिर भी थोड़ा अधिक दिखाई दिया,
हाँ,
उसका
हाँ।
कारण ये क्योंकि वो पूर्व में संचित ऐसे बड़े बड़े बड़े, बड़े हुए थे,
हाँ।
ये बात
उसके नीचे
पहले वाला प्राचीन,
हाँ।
ये प्राचीन शेष, ये वाला अभी
वो तो वही गलित अवशेष था ना, तो वही शीर्ष रहेगा,
ये शीर्ष तो यही रहेगा, इसके ऊपर कांडक है पूरा। अब ये कांडक समाप्त हुए ना, ये उसकी अंतिम फाली इतनी रहेगी, मान लेते हैं ये कांडक की अंतिम, कांडक की अंतिम फाली इतनी रहेगी,
हाँ। वहाँ पे इसे रखता हूँ,
ये शीर्ष वही है, अंतिम कांडक शुरू होने के समय से लेकर यह शीर्ष है,
हाँ।
ये पुराना इधर है, हाँ, वो ये नीचे आ कांडक तो हमने इसी को लिया था, नीचे के गल गए हैं,
नहीं अरुद्ध वो खाली वो तो अवस्थित हो गई थी ना,
नीचे कैसे आएगी,
हाँ अवस्थित हो गई थी वो गुरुश्री, तो वहाँ पे जो
गलित अवशेष है,
हाँ।
ये गलित अवशेष है, ये नीचे नहीं आएगा, नीचे से समय नष्ट हो जाएगी,
ये गलित अवशेष नहीं अवस्थित गुणश्रेणी हो गई, हाँ। तो ये इसे दो रत्न होगी ना, पहले ये नीचे वाली रत्न, उसके ऊपर दूसरी गुणश्रेणी,
इसको हम अवस्थित कहेंगे,
हाँ।
ये तो गुणश्रेणी को शीर्ष बता दिया,
हाँ। ये तो घात के समय ये गुणश्रेणी शीर्ष हो गया, जो अभी जब सभी लास्ट कांडक जब घातों के लास्ट पाली जब नीचे आएगी तभी ये गुण श्रेणी शीर्ष हो गया,
नहीं नहीं तभी नहीं बना,
वो बनता गया
नहीं
पहले
आठ जब अंतिम फाली शुरू हुई,
हाँ, तभी
से यही है,
तभी से यही है बराबर, हाँ। है उसके ऊपर दूसरी गुण श्रेणी भी रखता होगी ना, आपने
नहीं
पता
हुई
है?
वो तो दिखाई दी,
हाँ।
वो दिखाई दी वही से विशेष अधिक गुण श्रेणी नहीं विशेष अधिक,
हाँ, विशेष,
विशेष अधिक को गुण श्रेणी नहीं कहते,
अच्छा वहाँ पे गुणित प्रमाण में परमाणु नहीं थे इसीलिए विशेष अधिक, विशेष अधिक
दिया जाने वाला द्रव्य तो हीन प्रमाण से दिया था,
हाँ।
दिखने में थोड़ा अधिक दिखता था परंतु वो पुरानी गुणश्रेणी कांडक के अंदर थी,
हाँ।
अभी जो जो उदय समय से जो नई बनी है वो तो गलिताशेष देखो,
तो अवस्थित कभी से शुरू हुई, जब ये आठ साल की,
आठ साल से अवस्थित थी,
हाँ। वो अवस्थित कभी अवस्थित हुई इसीलिए एक एक नया नया शीर्ष उत्पन्न होता गया,
वो कब तक हुआ, जब तक अंतिम कांडक शुरू नहीं हुआ तब तक, अंतिम कांडक शुरू होने पर अब वो गलित शेष बनेगी, नहीं तो उसको कुछ वैल्यू ही नहीं ना, हमने नीचे कृतकृत्य वेदक प्लस एक्स्ट्रा समय रखे है,
हाँ।
उत्कीर्ण काल के,
हाँ।
वो उत्कीर्ण काल नष्ट होते होते मात्र कृतकृत्य वेदक नीचे रह गया,
हाँ।
और ऊपर का कांडक नीचे आ गया,
हाँ।
यानी ये गलित शेष ही होना चाहिए,
अच्छा अंतिम कांडक चालू
अभी
होने
उदय के समय से लेकर गलित शेष, पहले आठ वर्ष था तब उदय के समय से लेकर
अवस्थित हो गए,
देखो ये कहीं हो आके गया है,
अच्छा मैंने पूछ के
चौथी चौथी लाइन, और गलित शेष आयाम इस समय उदयादि गुणश्रेणी निक्षेप है,
गलित
ख्याल में आते हैं ना, क्योंकि नीचे कृतकृत्य वेद कितना ही काल बचेगा, कांडक तो हमने पहले से कांडक का प्रमाण फिक्स किया है, यानी अभी क्या शॉर्ट क्या होने वाला है, गुणश्रेणी का आयाम ही कम होते चला जाएगा, गलित शेष बचेगा, है, आप पूछते हैं, मैं कितना पक्का हूँ मुझे पता चलता है।
नहीं, हमारा पक्का पता है, इधर गड़बड़ होती है तो थोड़ी क्लियर
कोई बात नहीं, हमारी नहीं होती ऐसी बात थोड़ी है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना, वो बैठते बराबर धारणा,
हाँ, हाँ,
कुछ ऐसे पढ़े हैं परंतु
ख्याल भी नहीं आते, कभी भाषित भी होता है क्या बता
तो रहे? प्रश्न पूछने पर वो और भाषित हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे कि नहीं?
हाँ,
81 पेज पर चरिमय क्षीरखंड निश्चिदे कदकरणी ज्योति भन्न दे, अंतिम स्थिति कांडक के समाप्त होने पर यह जीव कृतकृत्य कहा जाता है क्योंकि इसने समस्त करणीय कर लिया है, करने योग्य। बेटी की शादी की तो कैसे कृतकृत्य लगता है,
हल्का हो जाता है।
बेटी वालों को पता, आपको क्या पता?
विवाह हल्का हो गया, हम भारी हो गए ना,
क्योंकि वहां तो आप लाते हैं, हम यहाँ तो खिपाते हैं। वो पहले नहीं पता चलता। हाँ देखो, इससे समस्त करणीय कर लिया है, इससे ऊपर यानी इसके पश्चात दर्शन मुनि की क्षपणा विषय कुछ भी करणीय नहीं है। करणीय नहीं, ये जो करण परिणाम वगैरह जो कुछ करने योग्य जो कार्य था वो तो सब समाप्त हो गया। आप कहेंगे ना, अभी भी इतने अंतर्मूल प्रमाण निषेक तो बाकी है, उसको छिपाना बाकी है कि नहीं? कहते
बाकी है,
बाकी है। अभी ये कार्य कुछ नहीं रहा बाकी।
तो हम लोग जो चलमल अगाड़ दोष देखते हैं सम्यक दृष्टि को, कुछ दोष जो दिखाई देते थे वो अभी ये समय से जाएंगे? अभी जो अभी संकलित
वहाँ कांडक कितने हुए हैं, अनुसपय अपवर्तन कितना हुआ,
तो वो दोष यहाँ पे भी रहेगा कि यहाँ पे?
नहीं नहीं के बराबर, फिर भी वो वहाँ प्रकृति है इसलिए वो क्षायिक नहीं कहेंगे इतनी बार। और वो बिल्कुल कितने छोटे काल में वो तो अभी नष्ट ही होने वाला, ये उसमें कुछ नई ताकत है इसे समझ लो ना, कुछ उसकी पावर नहीं है। और पहले भी जो दोष थे वो भी केवली गम्य थे, आपके हमारे ख्याल में आवे ऐसे नहीं थे। उसको समझाने के लिए कुछ उदाहरण देके समझाते हैं शास्त्र।
सो यहाँ पे जो संक्लिष्ट परिणाम जो आगे जो बताया कि अभी संक्लिष्ट और विषयों का परावर्तन देखा जाता है वो चारित्र मुनि की अपेक्षा ही है,
वो भी बिल्कुल माइल्ड होगा उसको।
चारित्र मुनि की अपेक्षा
अभी, क्योंकि कोई मरकर नरक में जाता है तो उसके योग्य उसके लेशा भी बदलेगी कि नहीं बदलेगी?
नहीं, आपका प्रश्न
विशुद्ध बताए
क्या वो चारित्र मुनि की अपेक्षा से है या श्रद्धा मुनि की अपेक्षा?
नहीं, चारित्र मुनि की अपेक्षा ही होगा
नेचुरली, क्योंकि अभी वो दर्शन मुनि कहाँ रहा है,
वो तो ऑलरेडी समझ गए।
देखो देखो, इसके ऊपर दर्शन मुनि की क्षपणा विषय कुछ भी करणीय नहीं है, क्षपणा विषय कोई भी कार्य अभी बाकी नहीं है क्योंकि वैसा कुछ करणीय नहीं पाया जाता, इसलिए अंतिम स्थिति कांडक के समाप्त होने पर वहां से लेकर सम्यक के अंतर्मूल प्रमाण गुण श्रेणी गोपुच्छाओं के क्रम से गलाने के समय तक यह कृतकृत्य संज्ञा के योग्य है, यह सिद्ध हुआ। और इसके अपने काल के भीतर जो प्ररूपणा विशेष संभव है उसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध है। साधे मरणम निहोज्य, उस काल में मरण भी हो सकता है। कब? ये करने जैसा कार्य पूरा हुआ है, अब कहते अब मरने के लिए भी फुर्सत है, हम कहते ना मरने के लिए फुर्सत नहीं है। उस काल के भीतर प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक जहाँ कहीं विद्यमान, यानी वो कृतकृत्य वेदक का पहला समय हो, दूसरा हो, अंतिम समय कुछ भी हो, कहीं पर भी उस जीव का मरण हो सकता है। कहीं विद्यमान जीव का भव के क्षयवश, भव हुआ है, भव के क्षयवश मरण भी स्यात हो सकता है, स्यात यानी कदाचित हो सकता है, क्योंकि दर्शन मोह के क्षपक के नहीं मरने की प्रतिज्ञा अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक ही है। प्रतिज्ञा ने ऐसा कोई प्रतिज्ञा नहीं करता कि मैं नहीं मरूं। प्रतिज्ञा ने ऐसा वस्तु का स्वरूप है। लेसा परिणामम पि परिणामेज, लेसा परिणाम को भी परिणमा सकता है, क्योंकि हमने देखा है तीरंच में जाएगा, नरक में जाएगा, कपोत लेशा में जाएगा। अब तक तो शुभ तीन लेशाओं में से कोई एक लेशा थी। यह कृतकृत्य जीव पहले से वर्तमान शुभ तीन लेशाओं में से अन्यतर लेशा से परिणत होकर आया है। किसी एक लेशा में उसका कुछ चल रहा था, किंतु इस समय दूसरी लेशा के परिणाम को भी प्राप्त करता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कृतकृत्य समय दृष्टि जीव के पहले समय में ही लेशा परिवर्तन होता है, इस प्रकार यहाँ नहीं ग्रहण करना चाहिए, किंतु यहाँ पर लेशा परिवर्तन के अभिमुख होकर पुनः अंतर्मूर्त काल द्वारा विवक्षित लेशा से दूसरी लेशा को परिणमाता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इसका कारण आगे चूर्णिक सूत्रकार स्वयं ही कहेंगे, उसके बारे में और आगे बताएंगे। अब अंतर्मूर्त काल तक कृतकृत्य होकर दूसरी लेशा को परिणमाता हुआ यह क्या अविशेष रूप से सभी शुभाशुभ लेशा रूप परिणमता है या कोई विशेषता है? ऐसी आशंका होने पर निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। लेशा परिणाम की इसका अर्थ क्या है?
पुरुषों
तक पहुंच जाता है क्या? कहते काउ तेउ पम सुप्त लेसाणम अन्नदरो, कापोत तेज पद्म और शुक्ल लेशाओं में से अन्यतर लेशा परिणाम होता है।
तो के कृतकृत्य वेदक और जो साहिक सम्यक भी है मनुष्य और तिर्यन गति में चतुर्गुण स्तर वाला, उसको भी ये चार ही लेशिया हो सकती है?
एक जीव के एट ए टाइम एक ही होगी।
हाँ नहीं, वो तो बराबर है, पर वो क्या कृष्ण और नील वाला नहीं हो सकेगा कृतकृत्य वेदक? अरे साहिक सम्यक
कृतकृत्य वेदक साहिक मत कहो, कृतकृत्य वेदक वाला को
साहिक चौथे गुणस्थान,
साहिक हो जाने के बाद उसके चौथे गुणस्थान में तो छह लेशा पाई जाती है। साहिक तो ऐसा लिया ना, सर्वार्थ सिद्धि तक तैतीस सागर तक शुक्ल लेशा वाला है।
हाँ।
माँ के गर्भ में आया है
कृष्ण
और छह अंतर्मूर्त में कृष्ण लेशा तक पहुंचा, ये बात आती है ना, आपने पढ़ी तो होगी।
हाँ,
पहले
हाँ।
उसकी बात नहीं, ये
कृतकृत्य
वेदक के काल की बात है। और भोग भूमि में जाएगा वहां तो पर्याप्त अवस्था में काप होता है, बाद में तो शुभ लेशा होगी, पीत पद्म चतुष्पद होगी। हाल में आती बात, मरकर जाने वाले की अपेक्षा वो कपोत कहेला ही होगा, नरक में जाने वाला तो कपोत ही रहेगा,
कपोत ही रहेगा।
अभी वो क्या बताना चाहते देखेंगे हम। अंतर्मूर्त काल के बाद कृतकृत्य समय दृष्टि जीव, यानी एक अंतर्मूर्त के बाद होगी बात, और ये भी अंतर्मूर्त से अंतर्मूर्त कितने छोटे हो गए हैं। अंतर्मूर्त काल के बाद कृतकृत्य समय दृष्टि जी पहले की अवस्थित लेशा का परित्याग कर, क्या अभी एक ही लेशा में यह कार्य चल रहा था? इसका अर्थ क्या, एक जीव की एक ही होगी?
नहीं, एक जीव की
एक ही लेशा में कार्य
विशुद्ध परिणाम होते जाते हैं तो वैसे जा पलटेगी ना,
ऐसा नहीं, पीत की पीत ही रहेगी।
नहीं, पीत की पद्म और शुक्ल हो सकती है ना, विशुद्धि की ओर जा रहा है।
यहाँ क्या लिखा, पहले की अवस्थित लेशा का परित्याग कर। अवस्थित लेशा कब थी उसकी?
अधप्रवर्तकरण से अवस्थित हो जाती है,
मुझे मालूम नहीं है। देखो जगन्य कापोत तेज पद्म शुक्ल, इनमें से कापोत भी होगी तो जगन्य होगी, अन्यतर लेशा रूप से परिणमता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस वचन द्वारा कृष्ण और नील लेशा का यहाँ अत्यंत अभाव कहा गया है। यहाँ कोई भी हालत में कृष्ण और नीललेशा यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि अत्यंत संक्लिष्ट हुआ भी कृतकृत्य जीव, कृतकृत्य शब्द डाला ना, साइक नहीं डाला, अत्यंत संक्लिष्ट हुआ भी कृतकृत्य जीव अपने काल के भीतर जघन्य कापोतलेशा का अतिक्रम नहीं करता। यानी वो शुभ में से यदि अशुभ लेशा रूप हो भी जाएगा तो जघन्य कपोत, उससे आगे नहीं। अब स्थिति कांड गात आदि से रहित तथा सम्यक्त्व के अनुभाग का पूर्व प्रयोगवश प्रत्येक समय में अनंत गुणी हानि रूप से अपवर्तन करने वाले, पूर्व प्रयोग यानी अभी तक करता आया है तो वही कार्य आगे चलेगा, अभी कुछ नया वो नहीं कर रहा है, क्योंकि करने जैसे तो सब कार्य हो गए उसके, क्षपणा के लिए ये कुछ नया कार्य नहीं कर रहा है, पूर्व प्रयोग चल रहा है। जैसे हम
इंजन बंद कर देते तो भी गाड़ी थोड़ा आगे
गाड़ी चलती। अच्छा इसको कहते पूर्व प्रयोग, अपना पंखा भी घूमता रहता है। हाँ। बटन बंद पर करने पर प्रत्येक समय में अनंत गुणी हानि रूप से अपवर्तन करने वाले, किसका अपवर्तन हो रहा है नितिन भाई? किसका घात किसका हो रहा है? अनंत गुणा घात हो रहा है किसका?
नहीं, अनुभाग।
निषेक तो एक एक घट रहा है, अनुभाग
अनुभाग
घात अनुभाग का हो
रहा है। अनुसमय
जितना अनुभाग है उसका अनंत भाग नहीं जाता है, एक एक समय में अनंत गुणा हीन होता है। देखो यहाँ क्या लिखा, अनुभाग का लिखा ना, सम्यक्त्व के अनुभाग का पूर्व प्रयोगवश प्रत्येक समय में अनंत गुणी हानि रूप अपवर्तन अपवर्तन करने वाले इस कृतकृत्य जीव के अपने काल के भीतर उदीर्णागत विशेषता का कथन करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। उदीर्ण यानी उदयावली में प्रवेश करना, कृतकृत्य वेदक के तो अंतर्मूल प्रमाण निषेक थे, तो आवली तो नीचे उदयावली है, आवली के ऊपर बहुत सारे निषेक है, उसमें से उदीर्ण होकर आवली में प्रवेश करेंगे। अन्य कोई कार्य नहीं होगा यहाँ पर, उदीर्ण वाला होगा वही बताते हैं सूत्र में। उदीर्णा पुनः संकिलिठ सदुवा विशुद्धुवा तो भी असंख्यज समय पबद्धा असंख्यज गुणाए सेढ़िए जाव समयाहिया आवलिया शेषाक्ति। उक्त जीव चाहे संकलेश को प्राप्त हो चाहे विशुद्धि को प्राप्त हो तो भी, उसके एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने तक असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से असंख्यात समय प्रबद्ध रूप उदीर्णा होती है, क्योंकि अभी तक वो जो गुणित प्रमाण में हर समय जो दिया था माल वो पड़ा है प्रत्येक निषेक में असंख्यात गुणित प्रमाण से, जब नीचे आएगा उसका तो भी असंख्यात गुणित प्रमाण से उसकी उदीर्णा होगी। एक सूत्र का अर्थ, कृतकृत्य जीव के काल के भीतर जिस प्रकार गुणश्रेणी निक्षेप आदि विशेष असंभव है, या तो गुणित प्रमाण में तो निषेक तो निक्षेप तो नहीं होगा, उसी प्रकार वहां असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा भी असंभव है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ वहां ऑलरेडी गुणश्रेणी रूप से रचना हुई थी वो तो कुछ निकल नहीं जाएगी, जब उदय में आएंगे उदीर्णा होगी तो उसी प्रपोर्शन में आ जाएगी। किंतु यह कृतकृत्य जीव अपने काल के भीतर संकलेश को प्राप्त हो या विशुद्धि को प्राप्त हो तो भी संकलेश विशुद्धि निरपेक्ष असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण उदीर्णा प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से कृतकृत्य के काल में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने तक प्रवृत्त होती है, प्रतिघात को नहीं प्राप्त होती, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। एक समय और आवली तक ही क्यों रुकती है, उसके बाद क्यों नहीं होती है? शायद कहाँ हुआ है
उदीर्णा किसके जगह?
उदीर्णा क्यों रुकी है? आवली में प्रवेश हो जाएगा, तो अब ये उदिरना उसी को कहते हैं जो उदयावली के ऊपर से नहीं उदयावली में आएंगे। जब उदयावली प्रमाण ही रह जाएंगे तो ऊपर कुछ है ही नहीं नीचे आने के लिए, तो उसको उदीर्णा नहीं कहेंगे। जितने हैं अभी उसके पोजीशन नहीं बदले, अभी एक एक करके उदय में आएंगे। शंका, यह नियम किस कारण से है? यह नियम स्वभाव से और पूर्व प्रयोग से है। कौन सा नियम? संकलेश हो या विशुद्धि हो, वो असंख्यात गुणित प्रमाण से वो निकल जाएगा। परंतु असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण यह उदीर्णा अत्यंत बहुत होकर भी उस समय होने वाले उदय के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है, यानी वहां जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग निषेक है उदीर्णा का अर्थ क्या है? ऊपर के निषेकों में थोड़ा द्रव्य नीचे आना, वो भले असंख्यात समय प्रबद्ध है परंतु उससे भी उदय वाला निषेक बहुत असंख्यात गुणा बड़ा है, यानी उसमें कितने असंख्यात समय प्रबद्ध हो गए। तो कहते उदय के असंख्यात विभाग प्रमाण, यानी उसका भी उदय हो रहा है। उदीर्णा का अर्थ ऊपर के उदयावली के ऊपर से कुछ द्रव्य निकलकर नीचे आ गया,
वो असंख्यात विभाग है।
वहां जो ऑलरेडी था उदय रूप निषेक उसके असंख्यात विभाग। इस बात का कथन करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। वो अवतार हम इतना ही है क्या? अच्छा अच्छा हाँ, इसको दे देखें। उदयस्य पुनः असंख्यजित विभाग उत्कस्यावि उदीर्णा, परंतु उत्कृष्ट उदीर्णा भी उदय के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है। जो अभी हमने बताया ना, वहां का जो निषेक है वो इतना बड़ा है कि उदीर्णा होकर उसमें जो आने वाला नया द्रव्य है वो उसके असंख्यात विभाग प्रमाण है। सबसे उत्कृष्ट जो उदीर्णा है वह भी तत्काल होने वाले उदय के असंख्यात विभाग प्रमाण ही है, अन्य प्रकार की नहीं है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसका क्या कारण है? गुणश्रेणी गोपुच्छा का महात्म्य इसका कारण है। मैंने पहले गुणश्रेणी रूप से जो रचना हुई थी, अब तक हर समय गुणश्रेणी रूप से वो इतना बड़ा हो गया है, यही उसका कारण है। इस प्रकार सर्वप्रथम कृतकृत्य के काल के भीतर होने वाले अर्थ विशेष का कथन कर, अब अधस्तन प्ररूपणा विषयक कुछ अर्थ विशेष का कथन करते हुए चूर्णी सूत्रकार इस सूत्र को कहते हैं। अब यहाँ जो कोई अन्य बातें बताएंगे उसकी बात हम करते हैं। हाँ, उदय का, हाँ वो उदीर्णा होकर भी उदय में आते हैं, परंतु वो ऊपर के निषेकों में से आकर नीचे मिल गए, तो वहाँ ऑलरेडी पहले निषेक से ही थे। वो इतना बड़ा है कि जो असंख्यात समय प्रबद्ध उसमें आ गए हैं, नए मिल गए, उससे भी वो असंख्यात गुणा वहाँ पर पड़ा है, वो उदय में, वो सब उदय रूप हो जाएगा।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होलो।
लक्ष्मी